lagi. कौन सा ब्रह्मा धर्मराज का पार्ट बजाता है, दाढ़ी मूछ वाला या महाकाली रूप वाला? हाँ, जो प्यार से नहीं सुधरते हैं तो काहे से सुधर जाते हैं? है, डंडे से सुधर जाते हैं। सुधरते हैं कि नहीं सुधरते हैं? हाँ जी, हैं? काली की पूजा नौवें दिन होती है। हाँ जी, पवित्रता की पहले पूजा होगी, गोरेपन की पहले पूजा होगी या पवित्रतापन की पूजा पहले होगी? काले की पूजा पहले होनी चाहिए, है? है? तो घर की जो सफाई है वो भी कौन करता है? है? घर की सफाई भी तो महाकाली करती है, नहीं करती? हाँ जी, लेकिन सफाई करना बड़ी बात है या भगवान का दिया हुआ दात धन देना बड़ी बात है? हैं? सफाई करना बड़ी बात है। भगवान ने जो आकर के दात दी, ज्ञान धन दिया, वो धन दान करना बड़ी बात नहीं है? हाँ जी, जगदम्बा सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और लक्ष्मी सिर्फ धन की मनोकामना पूर्ण करती है, तो ज्यादा महत्व का कौन हुआ? है जगदम्बा? नहीं, जो लक्ष्मी है वो पवित्रता की पावर से जो ज्ञान धन भगवान ने दिया है उस ज्ञान धन को ज्यों का त्यों अर्पण करती है, और जो अपवित्रता होती है बुद्धियों में वो भगवान के ज्ञान धन में मिक्सरिटी कर देता है और उल्टा ज्ञान सुनाई देते हैं। भक्ति मार्ग में ऐसे ही होता आया, नहीं तो पहले द्वापर के आदि में सतोप्रधान भक्ति थी, सत्य प्रधान एक ही शास्त्र था गीता, बाद में मिक्सरिटी होती रही। तो पवित्रता है फर्स्ट, पवित्रता की पावर से ही राजधानी स्थापन होती है। और हाँ, क्योंकि बस 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 भाई लोग जो हैं, जब बाप आते हैं तो दुनियावी धंधा धोरी में ज्यादा बुद्धि लगाते हैं, इसलिए बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती है आत्म की स्थिति में। और कन्याएं माताएं आत्म की स्थिति में स्थित हो जाती है, इसलिए माताएं बिंदी लगाती हैं, इसलिए माताओं को कलश दिया है ज्ञान का, बाइयों को ज्ञान का कलश नहीं दिया है, क्योंकि जट देह भान में आ जाते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में राम राज्य अभी हुआ कहाँ है? ब्राह्मणों की दुनिया में राम का राज्य हुआ है क्या? राम का राज्य दुनिया में तो क्या जो जन्म जन्मांतर का बहुत गहरा संबंधी रहा उसके ऊपर ही राज्य नहीं है? कहते हैं राम की सीता चुराई गई, तो वो कब चुराई गई? सतयुग में चुराई गई या संगम की बात है? संगम की बात है। तो राम का अपनी सीता के ऊपर भी राज्य नहीं है, तो दुनिया के ऊपर राज्य कहां से हो जाएगा? राम राज्य अभी मुर्दाबाद है या जिंदाबाद है? अभी तो मुर्दाबाद है। रावण राज्य जिंदाबाद हो रहा है। अब भविष्य में ऐसा क्या करें जो राम राज्य जिंदाबाद हो जाए? हैं? स्वस्थिति में स्थित होने से राम राज्य होगा, क्योंकि स्व आत्मा को कहा जाता है और स्व अपने बाप को भी कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि का बाप है राम और आत्मा का बाप तो है ही शिव, वो तो सदैव स्वस्थिति में है ही है। तो करना क्या है? हैं? क्या करना है? स्वस्थिति में स्थित होना है, अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित होना है और बाप की स्थिति में स्थित होना है। राम राज्य गाया जाता है तो राम राज्य राम के द्वारा ही स्थापन होगा ना? कि रावण के दस्यों द्वारा स्थापन होगा? राम है एक और रावण के सिर हैं अनेक। अनेक मतों से रावण राज्य बनता है और एक ही मत से राम राज्य बनता है। उसे एक राम में ही वो शिव बाप आते हैं मुकर्रर रूप से। उसे एक को पहचानना है कि वो मुकर्रर रथ कौन सा है। पहचान लिया, जान लिया, मान लिया, चल पड़े। तो राम राज्य स्थापन हो गई। जानने वाले, मानने वाले, चल पड़ने वाले नंबरवार होंगे या एक साथ हो जाएंगे? नंबरवार होंगे। हाँ जी, एक मिनट। हाँ बोलो, हाथ उठाओ। है
जो भी सृष्टि पर कुछ भी नहीं था, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य, ये कैसी सृष्टि होते हैं? एक नारी एक पुरुष फर्स्ट पहले होने से तो वो मनुष्य का भी सृष्टि होगा ना, फर्स्ट पहले कैसी सृष्टि होगी?
लक्ष्मी नारायण होंगे कि नहीं सृष्टि पर?
होंगे,
लक्ष्मी नारायण होंगे ना, होंगे तो जो लक्ष्मी नारायण होंगे, नर से नारायण बनने वाले, नारी से लक्ष्मी बनने वाले, उनसे कृष्ण बच्चा पैदा नहीं होगा? और वो बच्चे की पैदाइश इंद्रियों के आवेग से होगी या इंद्रियों से परे की स्टेज से होगी? इंद्रियों से भी परे की स्टेज होगी जिसमें आवेग का कोई अंश मात्र नहीं होगा। और एक ही युगल निकलेगा या नंबर वार और भी युगल निकलेंगे? और भी निकलेंगे। हाँ, इसे संशय क्यों पैदा हो गया? हाँ, और हैं? नहीं, जो शरीर का संबंध है वो विनाशी है। विनाशी है या अविनाशी है? शरीर की इंद्रियों का जो संबंध है, चाहे वो कर्मेंद्रियां हो चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, वो इंद्रियों का संबंध नीचे ले जाने वाला है। जैसे लक्ष्मीनारायण के चित्र में दिखाया है, नीचे राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं, ये इंद्रियों का संबंध हुआ या नहीं हुआ?
हुआ।
तो उनकी कलाएं नीचे उतरती जाती हैं या ऊपर उठती हैं? नीचे उतरती। लेकिन उनके ऊपर जो उनके माँ बाप खड़े हुए हैं, राधा लक्ष्मी नारायण, नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाले, वो एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है। कर्मेंद्रियों से भी संबंध नहीं है, ज्ञानेंद्रियों से भी कोई संबंध नहीं है। फिर किस तरीके से संबंध है? वाइब्रेशन का संबंध है। जैसे नर पपीता दो किलोमीटर की दूरी पर भी खड़ा है, तो जो फल देने वाला पपीता वृक्ष है, नारी वृक्ष है, वो दो किलोमीटर दूर से ही अपना पराग खींच लेता है और वो फल पैदा हो जाता है उसमें। नर पपीता फल नहीं देता है, जो मादा पपीता है वो फल देता है। तो वाइब्रेशन से वो फल पैदा होता है या नजदीकी संबंध से फल पैदा होता है? वाइब्रेशन से होता है। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि में एक टाइम ऐसा भी आता है ऊंची स्टेज वाला कि मनुष्य आत्माएं वाइब्रेशन के आधार पर राधा कृष्ण जैसे बच्चों को पैदा करेंगे। और हाँ जी,
भक्ति मार्ग में कहते हैं लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण, लेकिन शिव पार्वती क्यों कहते हैं?
लक्ष्मी नारायण को लक्ष्मी नारायण कहते हैं
और राधा कृष्ण कहते हैं,
और राधा कृष्ण को राधा कृष्ण कहते हैं। नारी रूप को आगे रख दिया, सीताराम को सीताराम कहते हैं, नारी रूप आगे रख दिया। परंतु जब कहते हैं शिव पार्वती तो पुरुष रूप आगे क्यों रख दिया? कहते हैं शंकर पार्वती, तो पुरुष रूप आगे क्यों रख देते हैं? उसका कारण है ऊंचाई। देवताएं ऊंचे होते हैं या भगवान ऊंचा होता है? भगवान जो है वो पुरुष रूप में गाया हुआ है या स्त्री रूप में गाया हुआ है? पुरुष रूप में गाया हुआ है। जो सीताराम है, राधा कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है, ये भगवान है या देवी देवता है? तो इनकी स्टेज नीची है और शंकर पार्वती या शिव पार्वती की स्टेज ऊंची है। वो गॉड फादर के डायरेक्ट बच्चे हैं। गॉड इज वन, तो उनका बच्चा भी वन कहा जाता है। इसलिए शंकर पार्वती कहो या शिव पार्वती कहो, उनमें जो पहला नंबर नाम आया वो भगवान का प्रैक्टिकल रूप है। नहीं तो भगवान तो बिंदु है, निराकार है। बिंदु कोई प्रैक्टिकल रूप नहीं है। प्रैक्टिकल रूप का गायन पूजन होता है। इसलिए शिव का या शंकर का नाम पहले और पार्वती का नाम बाद में। अरे भाई, जानवर से ही जानवर पैदा होगा। जानवर की पैदाइश किससे होगी? जानवर से। आम से ही आम पैदा होगा कि बबूल पैदा होगा? इसलिए जो निराकार और साकार का मेल है, उस निराकार और साकार के मेल से ही जीव पैदा हो सकता है। जीव जो है वो निराकार और साकार का मेल है, और जो सारी सृष्टि चैतन्य है वो निराकार और साकार का मेल है। उसकी पैदाइश किससे होगी? सिर्फ निराकार से होगी या सिर्फ साकार से होगी या दोनों के मेल से होगी? इसलिए सिर्फ निराकार से सृष्टि नहीं होती है, निराकार भी साकार में आकर के प्रवेश करके कार्य करता है। और जो कार्य करता है वो यही करता है कि आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाता है। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया एक ही बाप है। दोनों को क्यों? एक आत्मा का क्यों नहीं? एक शरीर का ही क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि दो से ही सृष्टि चलती है, एक से सृष्टि होती ही नहीं। इसलिए सृष्टि का आरंभ उसी व्यक्ति से हो सकता है जो विनाश काल में भी जीवित रहे। इसलिए भक्ति मार्ग में भी 33 करोड़ देवताओं के बीच और आज की 500-700 करोड़ मनुष्य के बीच एक ही आत्मा ऐसी है, जीवात्मा, जिसका मरण और जन्म नहीं दिखाया जाता। कौन? शंकर। तो शंकर है पुरुषार्थ रूप और उसका संपन्न स्टेज का नाम है नारायण विश्व पिता। वो कभी मरता नहीं है, जन्म भी किसी से नहीं लेता। और है संगम युग में संगम युग में कृष्ण का पाठ विष्णु विष्णु में भुजाएं कितनी है मददगार है? चार मददगार जो भुजाएं दिखाई गई है वो जड़ है या चैतन्य है? है चैतन्य है। और जो चार भुजाएं हैं वो चारों भुजाएं एक जैसी है कि कोई नीचे है कोई ऊपर है कोई दाईं ओर की है कोई बाईं ओर की है? है ना, नंबरवार है ना। तो वो चार आत्माएं हैं चैतन्य जिनका स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन विष्णु कहा जाता है। ये चार आत्माएं कौन सी हैं? चार आत्माएं हैं ब्रह्मा सरस्वती और लक्ष्मी और जगदम्बा। इन चारों आत्माओं को जो मददगार भुजाओं के रूप में दिखाई जाती है वो भुजाएं जड़ होती है या भुजाएं अपने आप चलने वाली होती है? अपने आप चलना माना चैतन्य और जड़ जो न बोलता है न चलता है, इसलिए वो चार भुजाएं जो है अभी वर्तमान की ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में मौजूद है या नहीं है? है मौजूद है, परंतु चारों के संस्कार नहीं मिलते हैं। वो संस्कार जब मिलन हो जाएगा तो संस्कारों को मिलन कराने के निमित्त कोई एक साकार होगा जो उन भुजाओं को चलाने वाला कहा जाता है। जैसे मनुष्य की दो भुजाएं हैं, इन भुजाओं को चलाने वाला कोई ऊपर है या नीचे है? ऊपर है। ऐसे ही ये चारों भुजाओं को चलाने वाला जो राम वाली आत्मा है वो ऊपर दिखाई गई मस्तक में, इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा सो विष्णु। जिस नंबर का ब्रह्मा उसी नंबर का विष्णु। तो सबसे सर्वोपरि ब्रह्मा कौन हुआ? जो सर के ऊपर बैठा हुआ है चारों भुजाओं को चलाने वाला। नारायण को याद करना बहुत सहज है, पहचानने के बाद कि बिना पहचाने? नारायण को याद करना तो सहज बताया मुरली में, लेकिन नारायण को पहचानने के बाद सहज है या बिना पहचाने ही याद करना सहज है? या कागज के चित्र को या पत्थर की मूर्ति को याद करना सहज है? पत्थर की मूर्ति कागज का चित्र वो कोई चैतन्य नहीं है। जो चैतन्य में है वो संपन्न स्वरूपधारी अभी बना है या नहीं बना है? नहीं बना। तो जो नहीं बना है संपन्न है नहीं, अधूरा है। तो जो अधूरा है संपन्न नहीं है वो 100% पहचानने में आएगा, नहीं आएगा, वो गुप्त पार्ट है। इसलिए याद करना तो सहज है, लेकिन किनके लिए सहज है? उनके लिए सहज है जो संपन्न पुरुषार्थी हैं। संपन्न देवता की बात नहीं कही, संपन्न पुरुषार्थी। संपन्न पुरुषार्थी का मतलब ये है कि जब से बाप की पहचान की बात बुद्धि में आती है, सुनी जाती है, तब से ही तन भी तेरा, मन भी तेरा और धन भी तेरा, संबंधी भी तेरे, संपर्क में आने वाली आत्माएं भी तेरी, और जो भी समय है, भले सबको 24 घंटे का ही समय मिलता है, वो सारा समय तेरा, मेरा नहीं। ऐसी स्टेज वाली होंगी, जब से एडवांस में आई होंगी तब से उनकी स्थिति ऐसी देखी जाएगी। तो वो पहचान सकती है, कहेंगे पहचाना है, पहचाना है तो अर्पण किया है, नहीं पहचाना तो अर्पण कैसे करेंगे? और हाँ है? बोलो। अरे इतना धीरे बोलने से थोड़े ही चलेगा। हाँ जी, त्रिमूर्ति में त्रिमूर्ति में विष्णु के ऊपर ताज रखा हुआ है, और ब्रह्मा और शंकर के ऊपर ताज क्यों नहीं है? क्योंकि विष्णु है संपन्न रूप, पुरुषार्थ से पहले का रूप है या पुरुषार्थ के बाद का रूप है? बाद का रूप है। तो जो बाद का रूप है उसने ताज अच्छी तरह जिम्मेवारी का धारण किया या नहीं किया, या हिल जाता है? अगर ताज हिलता होगा तो गिर जाएगा। ताज अगर स्थिर है तो जिम्मेवारी से पीछे हटेगा, नहीं हटेगा। तो ये जिम्मेवारी का ताज दिखाया है, जो ब्रह्मा को नहीं है, शंकर को भी पुरुषार्थी जीवन में नहीं है, ये दोनों भगवान की याद के पुरुषार्थी हैं। याद जो है उनकी संपन्न नहीं हुई है, स्थिर नहीं हुई है, हिलती डुलती याद है, और जब तक हिलती डुलती याद है तब तक जिम्मेवारी पूरी नहीं संभाली जा सकती। इसलिए विष्णु का जो ताज है वो दिखाया गया है, शंकर और ब्रह्मा का ताज नहीं दिखाया गया। भक्ति मार्ग में भी नहीं दिखाते, न ब्रह्मा को ताज दिखाते न शंकर को ताज दिखाते। और है
<हैं? coughs> क्या बोला?
अरे जो ताकतवर है और जो कमजोर है उनमें अगर आपस में झगड़ा होगा तो ताकतवर मारेगा या छोड़ देगा? मारेगा तो मार दिया। अरे सर तो अलग हो गया ना, सर अलग हो गया माना उसका जो अहंकार भरा हुआ आत्मा में था वो अहंकार का सर अलग हो गया कि रह गया? अलग हो गया।
जो सती था वो लखीमपुर में हो गया।
हाँ
तो उसका उसको कोई पता नहीं पाया।
हाँ
उनको कोई पता नहीं पाया क्यों?
वो संपन्न स्टेज नहीं थी, सती की संपन्न स्टेज नहीं थी जो शंकर जी उसे वर्ण करते। जब दूसरा जन्म लेकर के अखूट तपस्या की तो संपन्न हो गई और शंकर के वर्ण करने योग्य हो गई। जब अधूरी है इसलिए खलास हो गई। हाँ
चालीस साल का जो शूटिंग हुआ 5000 वर्ष का शूटिंग में गया तो अभी जो क्वेश्चन संबंध हुई है अभी कौन सा बाबा
छिहत्तर तक 40 वर्ष जो शूटिंग हुई। हाँ
जो शूटिंग हुआ 5000 वर्ष का शूटिंग हो गया।
5000 वर्ष का शूटिंग हो गया सतयुग वर्ण की देवता देव आत्माओं का।
तो अभी जो शूटिंग हुआ
है। हाँ वो जो शूटिंग हुई है वो राज परिवार में आने वालों की शूटिंग हुई है या प्रजावर की शूटिंग हुई? अरे प्रजा बनाई गई या राजाएं बनाए गए? प्रजा बनाई गई। अभी तो राजाएं तैयार हो रहे हैं। और
अलख
माने देखना, अलख माने जो न देखा जाए। क्या अलग निरंजन? नी माने नहीं, अंजन माने कालापन काजल। अलग निरंजन मना जो देखने में नहीं आता है, निराकार है और उसमें कोई कालिमा नहीं है, कोई पाप नहीं है, उसको कहते हैं अलख निरंजन। तो वो जो धर्म है सबको नाच नचाता जाता फिर भी नजर नहीं जो आता, ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है? उन्होंने कह दिया भक्तों ने घनश्याम है। बाबा क्या कहते? घनश्याम है, कृष्ण है या शिव बाबा है? शिव बाबा है, इसलिए वो अलख निरंजन है, वो देखने में नहीं आता है। आज निश्चय करते हैं और कल अनिश्चय हो जाता है, तो कहेंगे देखने में आता ही नहीं। और हाँ हाँ जी हाँ जी, युगे युगे जो कहा है वो दो युगों के बीच की बात बताइए, माने हर युग में नहीं आता है, वो दो युगों के बीच में आता है। एक युग है 16 कला संपूर्ण और एक युग है कलाहीन। तो युगे युगे जो है कलयुग और सतयुग, इन दोनों युगों के लिए दो बार युगे युगे शब्द उच्चारण हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर युग में आता है, और हर युग में आएगा क्यों? मकान सतो प्रधान है तो कोई तोड़ता है? नहीं तोड़ता। सतो सामान्य है तो भी नहीं तोड़ता, थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो भी नहीं तोड़ता। जब मकान बिल्कुल रहने योग्य नहीं रहता, एकदम टप टपा टप इधर टूटा उधर टूटा उधर टूटा, रिपेयर करते करते परेशान, जैसे आज बीमारियां हैं, कितनी रिपेयरिंग हो रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, घट रही हैं? बढ़ रही हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है तमोप्रधानता की, तब चौथे युग में भगवान इस सृष्टि को, इस मकान को नया बनाने के लिए आता है। तो संभवा में युगे युगे झूठा नहीं कहा, सच्ची बात कही कि मैं दो युगों के बीच में आता हूँ। और
बाबा बापू और बाबा क्या शब्द और तो क्या है?
पंजाबी में बाबा बच्चे को कहते हैं। पंजाब है पश्चिम में और पूर्व में है बंगाल। बंगाल में बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। जो शिव आया है वो पश्चिम में आया, पश्चिम भारत में या पूर्वी भारत में आया? कहाँ आया पहली बार? बंगाल में आया, तो बंगाल की भाषा ही बोलेगा ना। बाबा माने क्या हुआ? ग्रंथ भाग। और
बाबा सत्तर वर्ष क्या बाबा है?
गीता माने गीत। ज्ञान का गीत, अज्ञानता का गीत नहीं, जिसका आगा पीछा ही नहीं मिलता। जैसे रामायण लिखी है, कुछ आगा पीछा पता ही नहीं चलता, अंधश्रद्धा का गीत है। लेकिन भगवान अंधश्रद्धा का गीत नहीं गाता, ज्ञान का गीत गाता है। ज्ञान माने जानकारी, हर बात की एक्यूरेट जानकारी। अंधश्रद्धा अंधविश्वास का नाम निशान नहीं, हर बात का प्रूफ और प्रमाण मिलेगा, इसलिए उसका नाम गीता है। क्योंकि वो गीता प्रैक्टिकल में संपन्न रूप में जो प्रयोगात्मक जीवन है उसको सफल करती है। पुरुष रूप सफल नहीं करता, न शंकर का न ब्रह्मा का। वो स्त्री चोला है जो उस ज्ञान के गीत को सफल करता है, उसका नाम पड़ता है गीता माता। यज्ञ के आज में भी वही गीता ज्ञान सुनाया जाता था और अंत में भी वही गीता ज्ञान। एक एक शब्द एक एक अक्षर क्लियर होगा और लोग मानेंगे, जान जाएंगे कि हमारा धर्म पिता कौन है, हमारी धर्म की माता कौन है, हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है। अभी तो भारतवासी भूले हुए हैं, और धर्म वाले जानते हैं कि हमारा धर्म पिता कौन है। पक्का पक्का एक ही नाम बताएंगे, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, वो अपने धर्म पिता का नाम बताते हैं, धर्म ग्रंथ का नाम बताते हैं, अपने धर्म का नाम स्पष्ट बताते हैं। लेकिन भारतवासी तो इतने पुराने तमो प्रधान हो गए हैं कि वो अपने धर्म पिता को भूल गए, धर्म ग्रंथ को भूल गए। अब बाप आकर के बताते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है। धर्म पिता के नाम पर तुम्हारे धर्म का नाम होता है। कहते हैं भक्ति मार्ग सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म। जानते नहीं है कि सनातन धर्म किसने स्थापन किया। जब नाम है सनातन तो उसके गुह्यार्थ में जाना चाहिए ना, शब्द के गुह्यार्थ में। बाप बताते हैं कि ब्रह्मा का जो पहला पुत्र है, चार धर्मों के चार बीज रूप पुत्र सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, उनमें जो सबसे बड़ा ज्ञान का पुत्र है, सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा योगी है, उसका नाम है सनत कुमार। उस सनत कुमार के नाम पर हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म पड़ा। तो धर्म भी क्लियर, धर्म पिता भी क्लियर। सनत कुमार को योगीश्वर के रूप में दिखाया गया, योगियों का ईश्वर। अब योगियों के ईश्वर एक होगा या तीन तीन होंगे। शंकर को भी योगीश्वर बताते हैं, कृष्ण को भी योगीश्वर बताते हैं। तो तीन तो ईश्वर नहीं हो सकते। वास्तव में ये तीनों एक ही हैं, एक के ही तीन नाम दे दिए हैं शास्त्रों में। तो हमारा धर्म पिता एक है, हमारा धर्म ग्रंथ भी एक है। वो धर्म ग्रंथ है गीता। गीता माता किस लिए? क्योंकि उसमें प्योरिटी की इतनी पावर है कि प्योरिटी की पावर से मुख से जो भी बोलती है लोगों के हृदय में उतर जाता है। वो प्योरिटी की पावर न शंकर में न ब्रह्मा में। इसलिए कहा आह्वान करो इसका, विजय माला का आवाहन करो। विजय माला में तो अनेक मणके हैं, कैसे आवाहन करेंगे सबका? अरे मुखिया का आवाहन करो, शहद की रानी का आवाहन करो, तो पूरी माला आ जाएगी। वो महारानी में क्या सिद्ध है जो अव्यक्त वाणी पहली में बताया, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वो कौन है भारत माता? वो लक्ष्मी, वो राधा, नाम दिया है राधा, राम अने राम, धाम अने धारण करने वाली, वो एक ही है जो राम को धारण करने वाली है। नहीं तो उस पुरुषार्थ रूपी धनुष को रावण ने हिला भी नहीं पाया और सीता ने बाएं हाथ में लेकर के घर की शुद्धि कर ली सीधे यहां से। ये गहने
महादेव मंदिर के सामने ताला क्यों दिखाते?
क्या दिखाते?
ताला
कहाँ दिखाते हैं?
महादेव मंदिर के
मस्तिष्क में,
महादेव के मंदिर के सामने,
महादेव मंदिर के सामने
तालाब
दिखाते हैं। क्या ऐसा है?
है।
हर मंदिर के सामने जहाँ जहाँ शिव का मंदिर है वहाँ सामने तालाब होता हो? हैं?
उनके आसपास
में तालाब होता है। उसका कारण ये है कि जहाँ महादेव दिखाते हैं, मुरली में बोला है, कहते हैं देव देव महादेव, वो भी मैं हूं। मैंने कौन सी आत्मा है महादेव का पाठ बजाने वाली? है शिव की आत्मा। और शिव जब इस सृष्टि पर आकर के पाठ बजाता है तो उनके नजदीक होता है मानसरोवर, कैलाश पर्वत पर क्या दिखाते हैं? मानसरोवर। तो कैलाश पर्वत है ऊंची स्टेज, ऊंची स्टेज को पहाड़ के रूप में दिखा दिया और उस पहाड़ पर जो ज्ञान जल का निर्मल तालाब है, जिस तालाब में पारदर्शी जल दिखाई पड़ता है, तल्ले में क्या रखा हुआ है वो भी दिखाई पड़ता है, इतना पारदर्शी। मिट्टी का नाम निशान नहीं। तो जब भगवान बाप शिव आते हैं तो उनके नजदीक होता है प्रजापिता का तन, वो ही ज्ञान मानसरोवर है। इसलिए यादगार में जहां शिव का मंदिर होता है पास में तालाब दिखाते हैं। और हाँ जोर से बोलो।
भैंस पहले या गीता पहले?
भैंस पहले
या गीता पहले?
वेद पहले, गीता पहले। वेद निकले हैं ब्रह्मा के मुख से। वेद माने विद, विद माने जानना, विद्या जानकारी। तो जो जानकारी है वो ब्रह्मा के मुख से निकली, लेकिन जो गीता ज्ञान है उन वेदों से भी पहले निकला है। जैसे संत 47 से ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकलना शुरू हुई तो वो वेदवाणी हुई, लेकिन सन 47 से पहले 36-37 से लेकर के कई वर्षों तक गीता ज्ञान सुनाया गया। गीता के श्लोकों का रहस्य सुनाया गया। जैसे सभी धर्म ग्रंथ संप्रदाय वालों ने गीता के अपने अपने तरीके से अलग अलग अर्थ कर दिए, ऐसे ही शिव भगवान वाच वो जब आते हैं तो गीता का अपने तरीके से निराला अर्थ बताते हैं, औरों की जो टीकाएं हैं उन टीकाओं में हर बात का जवाब नहीं मिलता। शास्त्रों का निर्णय नहीं हो पाता, लेकिन भगवान बाप आकर के जब गीता ज्ञान सुनाते हैं तो हर बात का जवाब मिलता है, रहस्य खुल जाता है। इसलिए गीता है पहले, वेद है बाद में, शास्त्र भी है बाद में। और हाँ 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 बोलो। अरे वो पीछे कोई बोल रहा है। क्या बोला? ये आगे वाले कह रहे सब सुनाई नहीं दिया, कोई बीच वाला बोलो क्या बोला।
हाँ,
लक्ष्मी नारायण की चार भुजाएं, लक्ष्मी की नहीं, लक्ष्मी की भी होती है जब महालक्ष्मी बन जाती है।
है?
हाँ हाँ जी।
राम सीता का क्या है?
रमिते योगिनो यस्मिन इति राम। राम अर्थात जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। सारी दुनिया को एक दिन योगी बनना पड़ेगा। जब विनाश होगा तो दुनिया के जो बड़े बड़े नास्तिक हैं वो भी उस राम को याद करेंगे। याद माने योग, तो वो योग लगाने वाले योगी राम के नाम में रमण करते हैं। नाम पड़ता ही है तब जब काम किया जाता है। जो काम राम के द्वारा हुआ वो काम दुनिया में कोई भी शख्सियत के द्वारा नहीं होता है, इसलिए राम कहा जाता है। एक मिनट। हाँ,
जो 4.5 लाख आत्मा है जो लास्ट में
रहेगी,
शरीर कहाँ पर छोड़ेंगे?
बर्फ के अंदर उनके शरीर रहेंगे, और तब तक रहेंगे जब तक उनकी आत्मा अपने नंबर से उतर करके उन शरीरों में प्रवेश न कर जाए। वो 4.5 लाख आत्माएं जो हैं, वो सतयुग में 150 वर्ष तक ऊपर से नीचे आती रहेंगी धीरे धीरे, और अपने अपने बर्फ में दबे हुए शरीर जो ऑटोमेटिक प्रत्यक्ष होंगे बाहर आएंगे, उन शरीरों में प्रवेश करती जाएंगी। जम्बूदी पे भूल गया? अरे जम्बूदीप भूल गया, माउंट आबू का नाम है या जम्बूदीप का नाम है? है जम्बूदीप का नाम है, आज भी जम्मू कहा जाता है, जम्मू कश्मीर बदल करके जम्मू हो गया, था जम्बू। और
बाबा,
हाँ
बाबा, गणेश जी का वाहन चूहा क्यों निकले?
हाँ, जो शंकर जी का बच्चा गणेश है ना, वो गणेश बच्चा चूहे के ऊपर सवारी करता है। खुद इतना भारी भरकम लंबे चौड़े शरीर वाला और चूहा छोटा सा, इसका मतलब ये है कि पहले ये पक्का करना है कि गणेश का पाठ ब्राह्मणों की दुनिया में किसका है। गण माने समूह, गणेश माने जो देवताओं का समूह है उसका ईश गणेश। सतयुग में देवताएं होंगे, उन देवताओं का ईश्वर कौन, उन देवताओं में मुखिया कौन, कौन कैसे है? मुखिया इसलिए कि वो सृष्टि का पहला पत्ता है। सतयुग में पहले पहले कौन आत्मा प्रत्यक्ष होगी? कृष्ण वाली आत्मा, तो कृष्ण वाली आत्मा ही गणेश के रूप में कलयुग के आदि से पूजी जाती है। जब देवान मनुष्यों में बढ़ने लगता है, ज्यादा होने लगता है, इसलिए गणेश को देवान का पुतला दिखाया है। हनुमान को काम विकार की पूछ दिखाई है कमर में, और गणेश के सारे शरीर में देहबान, काम विकार उतना बुलंद नहीं है लेकिन देह के अंग अंग में जो देहबान भरा हुआ है वो बहुत बुलंद है। क्या प्रूफ? गीता का भगवान कृष्ण है या गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है? सबकी बुद्धि में आ रहा है, उनकी बुद्धि में क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि आत्मा में देवान 63 जन्म का भरा हुआ है कि गीता का भगवान कौन है? कृष्ण। तो कैसे मान लें कि गीता का भगवान कोई दूसरा हो सकता है साकार में? तो जो गणेश है वो देवताओं में मुखिया माना जाता है। हाँ,
पहाड़ पर हमेशा पानी कैसे बहता रहता है?
है?
पहाड़ पर पानी हमेशा बहते रहता है।
हाँ,
उसकी कैसे
होता? उसका कारण है कि पहाड़ के ऊपर इतनी सर्दी होती है कि जो बादल हैं पानी बरसाने वाले, वो पानी ऊंचाई पर जाकर के जम जाता है और पहाड़ों पर बैठ जाता है, इसलिए हिमालय पर्वत पर उत्तर में जाएंगे तो हिम का आलय उसका नाम पड़ गया। जो भी पहाड़ियां हैं इतनी ऊंचाई पर हैं कि बादल वहां जाके टकराते हैं पानी बरसाने वाले, और वो पहाड़ वहीं बर्फ बन करके जाम हो जाते हैं। वो बर्फ जब गर्मी पड़ती है तो धीरे धीरे पिघलते रहते हैं, पिघलते बहलते पहाड़ों से धीरे धीरे नीचे नीची पहाड़ियों पर आते आते वो नदी बन जाती है। और हाँ
तो फॉर्म के ऊपर झूला दिया और सारी महाभारत का चित्र देखा था, तो ब्राह्मणी की चित्र से चीजें सीखी
महाभारत में पहला सेतु दिखाते
है ना,
पहला
भीम का बेटा भीम का तो एक ही बेटा था पहाड़ जैसा है घटोत्कच। भीम का बेटे का नाम है घटोत्कच। शास्त्रों में ये नाम नहीं है,
उड़ीसा का शास्त्र में
है। एक बात पक्की बुद्धि में रखो, बाबा ने बोला है मैं शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, वो सार ही सच्चाई है, और शास्त्रों में सारा भूसा भरा हुआ है। तुम भूसा उठा उठा के ला रहे हो या बाबा की सुनाई हुई बात सुना रहे हो? क्या सुना रहे हो? ओम शांति।